आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की क्या संभावनाएं हैं। साथ ही केंद्र ने राज्यों को कोरोना के मद्देनजर लगे प्रतिबंध पर क्या सुझाव दिया, यह भी आपको बताएंगे। इनके अलावा आज के पॉडकास्ट में अयोध्या में खरीदी गई जमीन को लेकर उठे विवाद की भी खबर होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने की खबर भी सुनाएंगे आपको। इनके अलावा ट्विटर पर दर्ज हुए केस, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के वाहन पर किए गए हमले, चार धाम की यात्रा और मध्य प्रदेश के क्राइम की खबर भी होगी आज के पॉडकास्ट। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। आज शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर बड़ी चर्चा हो सकती है। वहीं पीएम कुछ मंत्रियों के काम की समीक्षा भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विशेष रूप से सड़क एवं परिवहन, नागरिक उड्डयन, टेलीकॉम जैसे मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। बीते कुछ समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों छोटे छोटे मंत्रियों के ग्रुप से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और सभी के मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा भी लिया है। जाहिर है आज शाम 4 बजे होने वाली वर्चुअल बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के साथ उन्हें केंद्र के आगे के रोड मैप से भी अवगत कराया जा सकता है। आमतौर पर मंत्रियों के कामों की समीक्षा कैबिनेट में फेरबदल से पहले की जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यह हो सकता है। यह काम 19 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र से पहले किया जा सकता है। फिलहाल पीएम मोदी के मंत्रिमंडल की संख्या 60 है और यह बढ़कर 79 तक हो सकती है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों को सावधानी से प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही है। मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि कोरोना से निपटने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है। मंत्रालय ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर फोकस करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को केस पॉजिटिविटी रेट और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर लगातार ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जिलेवार रणनीति बनाने पर भी जोर देने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर केस पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल कंटेनमेंट रणनीति पर काम करना होगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन के विवाद ने साधु संतों को 2 गुटों में बांट दिया है। संतों का एक गुट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पक्ष में खड़ा है तो दूसरा गुट जमीन खरीद फरोख्त में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो किसी गुट के साथ न होकर तटस्थ हैं। अयोध्या में मंगलवार को महंत धर्मदास समेत कई बड़े संतों ने राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरयू तट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद अयोध्या के रक्षक कहे जाने वाले हनुमान जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राम मंदिर को लेकर आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने और ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों की किसी शीर्ष एजेंसी से जांच कराने की प्रार्थना की गई है। जाहिर है अब अयोध्या में ऐसे साधु संतों की संख्या बढ़ती जा रही है जो ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों की जांच चाहते हैं। महंत धर्मदास निर्वाणी आनी अखाड़ा ने कहा कि लोगों ने जो राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए हैं और देश में जो अराजक व्यवस्था फैली है लुटेरों का विंग बन गया है। चंपत राय, अनिल मिश्र जैसे कितने लोग हैं जो इस तरह से जमीन में घोटाला हो रहा है, राम जी की संपत्ति का बंदर बांट कर रहे हैं। महंत धर्मदास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए। आतंकवाद की पनागाह बने पाकिस्तान को अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने यूरोपीय यूनियन के हवाले से रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के निर्देशों का पालन करना ही होगा। बता दें कि महज 3 दिन पहले FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF के इस फैसले के बाद इस्लामाबाद अब दुहाई दे रहा है कि उसने वैश्विक निकाय द्वारा तय 27 में से 26 बिंदुओं को पूरा कर लिया है, तब भी उसे इस सूची में बनाए रखने का कोई तुक नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बीते शनिवार को कहा था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को मदद देने के खिलाफ FATF द्वारा तय 27 में से 26 बिंदुओं को पूरा कर लिया है। FATF ने 21 से 25 जून तक हुई पूर्ण बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों की मदद रोकने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को संदिग्धों की सूची में बरकरार रखने का फैसला किया था। FATF की बैठक में पाकिस्तान से हाफिज सईद और महमूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने और जांच करने को भी कहा गया है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। यह केस NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग की शिकायत पर दर्ज किया है। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाले जाने को लेकर NCPCR ने पहले भी कई शिकायत की थी। अब इस मामले में आयोग ने साइबर सेल के DCP को 29 जून को पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर आयोग पहले से भी गंभीर रहा था और साइबर सेल व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिख चुका था। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस शिकायत के बाद ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में ट्विटर को न केवल नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा बल्कि ट्विटर के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की ट्विटर के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले कांग्रेस टूलकिट मामले में भी ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम और लाडोसराय स्थित दफ्तरों में स्पेशल सेल ने नोटिस दिया था। वहीं ट्विटर के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी से बंगलुरु में पूछताछ भी की गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई है। डिप्टी CM ने मंगलवार को BJP नेताओं और उनके गुंडों पर रोहतास नगर में स्कूल निर्माण का विरोध करते हुए उनके सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने सिसोदिया के आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डिप्टी CM सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, आज रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए भाजपा के नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का फाटक तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। भाजपाइयों को स्कूल बनने पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है? बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में 2 माह से लापता एक ही परिवार के 5 सदस्यों के कंकाल पुलिस ने मंगलवार को एक खेत से बरामद कर लिए। इस मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। देवास जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 13 मई को नेमावर बस स्टैंड के पीछे रहने वाले मोहन लाल कास्ते की 45 साल की पत्नी ममता बाई कास्ते, 21 साल की बेटी रूपाली, 14 साल की दिव्या और रवि ओसवाल की 15 बरस की बेटी पूजा और उनका 14 साल का बेटा पवन लापता हो गए थे। पुलिस इस मामले में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कर परिवार की तलाश सरगर्मी से कर रही थी। शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ये लाशें बरामद की गई हैं। खेत में 10 फीट गड्ढा खोद कर दबाई गई 5 लाशें निकाल ली गई हैं। ये सभी लाशें कंकाल बन चुकी हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ताजा खबर के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह नया फैसला किया है। गौरतलब है कि सोमवार को ही प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के साथ राज्य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह भक्तों के लिए 4 धाम के लाइव दर्शन का इंतजाम भी करे। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।